पहले प्यारे भाई और बहनों, हम तो पहुंच गए हमारी क्लास नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे मसीह की कलीसिया के बारे में, चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह की कलीसिया। तीन भागे की स्टडी, तीन भागे की पढ़ाई मसीह की कलीसिया की हम आज से शुरू करेंगे और अगले दो हफ्ते ये पढ़ाई जारी रखेंगे। तो पहले भाग में मसीह की कलीसिया की पढ़ाई के पहले भाग में तो हम बात करेंगे जो चुनाव का काम चल रहा है, मसीह की कलीसिया के चुनाव का काम चल रहा है। तो आज हमारी पढ़ाई है मसीह की कलीसिया के बारे में, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार बोला तो बोला मेरी कलीसिया या हिज चर्च। अभी ये चर्च क्या है या कलीसिया क्या है, जिसे हम चर्च बोलते हैं ना, चर्च इंग्लिश का शब्द है, और कलीसिया का मतलब क्या है, और आज इतने बंटवारे क्यों हैं, इतनी मिशनें क्यों हैं, आज हम देख रहे हैं, है ना। आज हम देखें तो लगभग 1000 तक गिनती पहुंच चुकी है मिशनों की, ऐसी मिशनें जिनका नाम भी नहीं पता है हमें। तो क्या ये सारी मिशनें या सारे जो चर्च बोलते, रोमन कैथोलिक चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, ये सब मिलके प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है या क्या है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ हैं, है ना। तो हम शुरू करेंगे आज की पढ़ाई एक वचन के साथ, पहला कुरंथियां 12वां अध्याय 12वां वचन, पहला कुरंथियां 12वां अध्याय 12वां वचन।
क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा दिया।
तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है, देह तो एक है लेकिन उसके अंग बहुत हैं। तो कई लोग पता क्या बोलते हैं, ये अंग जो है ना, एक रोमन कैथोलिक, एक पेंटिकॉस्टल, ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये बोलते हैं देखो कलीसिया एक ही है लेकिन ये जो सारे है ना मिशने, ये अंग है, ये अंग है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को तो एक ही बोला गया है, देह कितनी है, एक, लेकिन अंग क्या है, अनेक। तो ये अंगों को ये लोग बोलते हैं कि ये तो मिशने हैं, लेकिन अगर ये बात सच है तो इन अंगों में एकता क्यों नहीं दिखाई देती? आपके शरीर में अंग अलग अलग है, जैसे हाथ है, आंख है, दिमाग है, लेकिन ये कभी किसी के साथ झगड़ा करते दिखे? मेरा हाथ आंख के साथ झगड़ा कर रहा है, या मेरा ये हाथ इससे बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा तुम इधर जाओ, ऐसा कभी देखा? हमारे शरीर में क्या है, एकता है ना, एकता, तभी तो हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो इनमें क्यों नहीं एकता दिखाई देती अगर ये बात सच है कि ये लोग, ये जो मिशने हैं, ये है कलीसिया। तो क्या कारण है कि आज ये एकता नहीं दिखाई देती? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आज की पढ़ाई में हम देखेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे उस वचन से जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार जिक्र किया अपनी कलीसिया के बारे में। वो क्या है, वो पढ़ते हैं मती 16 अध्याय 18वां वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की जुबान से होठों से पहली बार कलीसिया शब्द निकला?
16 का 18। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पात्रस है, और मैं एक पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे।
तो
यहाँ पर ये अधोलोक को कब्र माना गया ना, अधोलोक शब्द आ गया जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे।
नहीं, इंग्लिश में ऐसा शब्द ही नहीं है अधोलोक वाला। क्या बोला है? एंड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये गलत कर दिया है इन्होंने। क्या हेल लिखा है? हेल लिखा है। एक मिनट, पूरा वचन पढ़िए।
एंड आई टेल यू, यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट।
अधोलोक के
फाटक उस पर प्रबल ना होंगे।
हाँ, उसके मतलब अधोलोक, अधोलोक हेल मतलब जो क्या बोलते हैं कली, हाँ नर, जो कब्र है उसका अधिकार यानी मृत्यु का अधिकार नहीं रहा रहेगा इससे कलीसिया पे। मैं वो मैं बताऊंगा क्या है वो। तो ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार जुबान से निकले जब उन्होंने कलीसिया शब्द, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले कलीसिया के बारे में, इनका मतलब क्या है और इस पत्थर का मतलब क्या है, कलीसिया का मतलब क्या है? आपको पता है पत्थर, याद है ये वचन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है ये वचन। जब बोला प्रेरितों से लोग मेरे बारे में क्या पूछ बोलते हैं, तो प्रेरित बोलते कोई आपको याना बोलता है, कोई हाँ
मसीहा बोलता
है, ठीक है, तो मूसा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बोलता है चलो ठीक है तुम बताओ।
तुम मुझे क्या बोलते?
तो पत्रस ने क्या उत्तर दिया था? तुम तो जीवते परमेश्वर के पुत्र। तो उसके बाद ये प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोला था कि ये बात तो पवित्र आत्मा ने तुमसे प्रकट की और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी ये कलीसिया क्या है? कलीसिया एक बिल्डिंग है जो आज हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना संडे को भी बोलते हैं चर्च जाना है, ये चर्च जाना है, वो चर्च जाना है, ट्रिनिटी चर्च, पैट्रिक चर्च। तो क्या ये है चर्च? क्या ये है कलीसिया? जैसे आज सारे ईसाई मानते हैं एक बिल्डिंग को कलीसिया, इसलिए जब संडे को चर्च नहीं जाते तो ओहो आज बड़ा पाप हो गया, मैं चर्च नहीं गया, ये वो। तो क्या ये चर्च है? क्या ये सत्य है? चलो प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि रोमन कैथोलिक वाले पता क्या बोलते हैं, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली पत्रस को, और पत्रस को हेड बनाया कलीसिया का रोमन कैथोलिक वाले। तो बोलते जो पत्रस है वो है पहला पोप, और पोप के अधीन कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को। तो ये रोमन कैथोलिक वाले मानते हैं। तो पत्रस है पहला पोप, उसके बाद जो आज जितने भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बोलते ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया था, लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्योंकि हमें तो सत्य चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए मैंने बोला ना आप 13 से 17 पढ़ लो, 13 से 17 तक पढ़ो। हाँ, 16 का 13 से 17।
यीशु तिसरिया फिलिस्ती के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यमुना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पत्रोस ने पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात किस पर प्रकट की।
तो प्रभु सब लोग सारी दुनिया कंफ्यूजन में थी, कोई बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यरमिया, कोई कुछ भविष्यवक्ता। तो बोलता है ठीक है तुम बताओ, तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुम बताओ क्या समझते हो। तो पत्रस ने क्या उत्तर दिया, तू मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र। तो पत्रस की जुबान से जो निकला वो क्या था, सच्चाई। तो क्या निकली,
सच्चाई।
सच्चाई निकली पत्रस की जुबान से। तो उसके उत्तर में फिर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, फिर पढ़ लो आगे 18।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
तो तू पत्रस है, और यहाँ पे देखो प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को कलीसिया का हेड नहीं बनाया है। क्या बोला, इस पत्थर पे। पत्थर पे का मतलब क्या होता है, पत्थर कहाँ है, पत्थर कहाँ है, बोला इस पत्थर पे,
इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
पे, इस पत्थर पे, इसका मतलब क्या है, ऊपर या नीचे,
मतलब ऊपर नीचे नहीं, बीच में, मतलब पे,
पत्थर पे, पत्थर तो ऊंचा ही हो गया ना,
नहीं पत्थर के, मतलब
इस पत्थर के ऊपर, सिंपल भाषा में मैं बोल देता हूँ, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब समझ आ रहा है, पत्थर पे। तो ये पत्थर कहाँ है, नीचे। तो हेड कहाँ होता है, तो कलीसिया को उल्टा कर दिया गया, नहीं ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला था, पत्रस को नहीं बोला था, पत्रस के शब्दों को बोला था, पत्रस के शब्दों को। पत्रस की जुबान से क्या निकला, सत्य। पत्रस की जुबान से क्या निकला, सत्य। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, कि जो कलीसिया की नींव है वो क्या होगी, सत्य। वो क्या होगी, सच्चाई होगी कलीसिया की नींव। इस सत्य पे मैं रचूंगा कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, क्योंकि नींव तो नीचे होती है, नींव तो ऊपर नहीं होती। तो पत्रस हेड कैसे बन सकता है, और हेड कौन है, ये बात देख लो साफ साफ वचन में, पहला कुरंथियां 3:11। वो नींव जो है ना, नींव, वो नींव कौन है, देख लो बात, देख लो
3:11।
हाँ जी,
क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता।
वो नींव कौन है, देख लो, पत्रस को भी नींव नहीं बनाया है, नींव कौन है, खुद प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, नहीं क्या है,
तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र।
प्रभु यीशु मसीह क्या है, इकलौता पुत्र तो है। ये क्या लिखा है, सत्य। प्रभु यीशु मसीह क्या है, सत्य, सच्चाई। यूहन्ना में क्या बोलता है, शब्द, 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 परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, यानी सत्य। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो सत्य है नींव कलीसिया की। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को हेड नहीं बनाया था कलीसिया का। और पत्रस 2000 साल तक कैसे इतना बोझ उठा सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही उठा सकते हैं, क्योंकि मत्ती 28:20 में क्या बोलते हैं, देखो मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो पत्रस नहीं ये कर सकता, ये कौन कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। 28:20, हाँ।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
देखो तो पत्रस तो नहीं कर सकता ना ये कौन कर सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, या इस वचन में दो शब्द इस्तेमाल हुए थे, एक तो पेट्रोस एक तो पेट्रा। तो पत्रस जो पीटर शब्द आता है वो होता है पेट्रो, छोटा पत्थर, लेकिन जो जिस पत्थर पे मैं कलीसिया बनाऊंगा वो है बड़ा पत्थर, और वो है सत्य। वो क्या है? सत्य। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं बोला, एक बोला है, अनेक नहीं बोला है, चर्चेस नहीं बोला है, चर्च बोला है, एक बोला है ना, सही ना। तो ये आज की आज जो अपने आप को कलीसियाएं मानते हैं ये इस बात से एग्री क्यों नहीं होते हैं, और इतने मिशन और इतने बंटवारे क्यों हैं? सबसे ज्यादा बंटवारे क्रिश्चियंस में है, मुसलमानों में भी इतने बंटवारे नहीं है, सबसे ज्यादा किनमें है? क्रिश्चियंस में। तो ये क्यों है उसका उत्तर भी हम पढ़ लेते हैं बाइबल में। ये शुरू में प्रॉब्लम आ गई थी, पढ़ लो पहला कुरंथियां 3:3-4। पहला कुरंथियां
क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में दा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलुस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं?
देखो तो बोलता है जब तुम में झगड़े हो बंटवारे हो ईर्ष्या है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? जब तुम बोलते हो मैं पौलुस का हूँ, एक बोलता है मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? आज एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को जब मिलता है तो क्या बोलता है? पूछते आप कौन सी मिशन से? आप कौन सी मिशन से? देखो क्या है ये झगड़े बंटवारे ये सब किसकी निशानियां है? शारीरिक। ये शुरू में ही कलीसिया की आदत बन गई थी अपने लिए एक लीडर चुनने की, नेता। तो वो बोलते थे अरे मैं तो पौलुस के द्वारा चुना गया हूँ, दूसरा बोलता था मैं अपौलुस के द्वारा चुना गया हूँ। तो ये सब होता था शुरू में ही, ठीक है, जब प्रेरित मौजूद थे। तो कोई भी लीडर प्रभु यीशु मसीह को नहीं बनाता है। लीडर किसको बनाते हैं? मेरे जी अंकुर अरोड़ा जी लीडर हैं, मेरे ये लीडर हैं, मेरे वो लीडर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कोई लीडर नहीं मानता, ठीक है, कि मेरा लीडर तो वो है, उसका वचन है मेरा। भजन संहिता में क्या बोलता है? वो 119-105 में क्या बोलता है? तेरा वचन मेरे रास्ते का दीपक और मेरे पैरों की ज्योति है। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह, यीशु मसीह। और यीशु मसीह किस रूप में प्रकट हुआ? वचन के रूप में, ज्ञान। यीशु मसीह का दूसरा नाम है ज्ञान, ठीक है। लेकिन सब लोगों को तो अपने अपने नेता चाहिए, आदत पड़ गई है वो गुलामी की। आज 2000 साल हो गए हैं कलीसिया के इतिहास को, और रोमन कैथोलिक एक बंटवारा है, और एक और बंटवारा है प्रोटेस्टेंट। सुना है प्रोटेस्टेंट शब्द? प्रोटेस्टेंट एक तो रोमन कैथोलिक है, एक तो प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट्स में आ जाती है 750 से ज्यादा मिशने। प्रोटेस्टेंट्स पता कौन है? पेंटिकॉस्टल प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है विरोधी। किसके विरोधी? रोमन कैथोलिक के विरोधी। तो प्रोटेस्टेंट्स की गिनती है 750 मिशन। प्रोटेस्टेंट एक ग्रुप है लेकिन उसके अंदर है 750 बंटवारे, जैसे पेंटिकॉस्टल, CNI और सेवन डेज, ये वो, कितनी भी जितनी भी ये जो रोमन कैथोलिक को छोड़ के कलीसिया हैं वो सारे हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो कोई बोलता है मैं कैथोलिक हूँ, कोई बोलता है मैं लूथरन हूँ, कोई बोलता है मैं CSI हूँ, कोई बोलता है मैं पेंटिकॉस्टल, पता नहीं कितने एक चल रहे हैं। आज जब ईसाई एक दूसरे से मिलते भी है तो पहला प्रश्न यही होता है, आप कौन से चर्च से हो या कौन सी मिशन से हो, ये प्रश्न होता है। लेकिन क्या ये प्रश्न शुरुआती कलीसियाओं में भी पूछा जाता था प्रेरितों के समय? नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता था, क्योंकि उस वक्त एक ही कलीसिया थी और वो थी, एक ही चर्च था, इनफैक्ट मैं बोलूंगा एक ही चर्च था और वो चर्च था प्रभु यीशु मसीह का। वो चर्च था किसका? प्रभु यीशु मसीह का। वो कलीसिया थी प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आज चर्चेस किसके हो गए हैं? आप भी बोलते हो ना, मैं हरभजन के चर्च जा रहा हूँ, मैं उसके चर्च जा रहा हूँ, मैं उसके चर्च जा रहा हूँ, है ना? ऐसा क्यों? और वो एक चर्च या एक कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है वो कहाँ है? वो कहाँ है? क्योंकि हमें तो उसमें शामिल होना है। हाँ, कोई बोलता है मैं रोमन कैथोलिक चर्च से हूँ। हो सकते हो तुम रोमन कैथोलिक चर्च के हो लेकिन तुम मसीह के चर्च के नहीं हो, मसीह का चर्च कुछ और है। कोई बोलता है मैं पेंटिकॉस्टल चर्च का हूँ। हाँ, पेंटिकॉस्टल चर्च के हो सकते हो लेकिन मसीह के चर्च के नहीं हो सकते। जो बोलेगा मैं मसीह के चर्च से हूँ वो तो होगी सत्य वाली कलीसिया, सच्चाई वाली कलीसिया। और कहाँ है वो कलीसिया? अब जानना चाहोगे उस कलीसिया के बारे में? चलो उस एक कलीसिया के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों 12:23।
और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं।
पहलौठों की कलीसिया, चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। पहलौठे मतलब समझते हैं ना, जो पहला पहले पैदा हुए, वो कलीसिया। ठीक है, तो ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। कोलोसियों 1:18 में भी पढ़ लो, जो पहलौठे हैं, जो मुर्दों में से पहले जी उठते हैं, पढ़ लो ये बात। एक अठारह,
वही थे अर्थात का सिर है, वही आदमी और मरे हुए से दुख उठने वाले भी उठने वालों में
पहलौठा, मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा, पहला। तो इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, जिनकी मेंबरशिप के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? स्वर्ग में, स्वर्ग में है उनके नाम, वो रहेंगे परमेश्वर के सामने अंग संग हमेशा। तो इस चर्च के बारे में भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17:14।
प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए सुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे।
बुलाए हुए और चुने हुए और जो विश्वासी हैं। ये एक लड़ाई जो मेमना लड़ेगा, एक भविष्यवाणी वाली लड़ाई जो फ्यूचर में है, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की महिमा दिखाई जा रही है इस वचन में। वो मेमने के साथ होंगे, वो मेमने के साथ होंगे और उनको क्या बोला, ये है बुलाए हुए और चुने हुए और वफादार। इस वचन का मतलब क्या है?
वे किसको संबोधित कर रहे थे? बोले ना वे मेमने से लड़ेंगे, वे किसको?
हाँ वही शैतान के साथ जो प्रोफेटिक एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक लड़ाई जो होगी, तो उसके जब लड़ेंगे तो साथ में कौन होगा? कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन होगी? कलीसिया। और शैतान के साथ कौन होगा? उसके दूत। ठीक है, तो ये कलीसिया को बोला है बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। तो यहाँ पे इस वचन में दिखाया जा रहा है कि कलीसिया की डेवलपमेंट के, कलीसिया की बढ़ोतरी के तीन स्टेज है। तीन स्टेज। पहली स्टेज क्या है? पहली सीढ़ी जिसे बोलते हैं बुलाए हुए। दूसरी सीढ़ी क्या है? चुने हुए। और उसके बाद तीसरी क्या है? वफादार। वफादार यहाँ पे विश्वासी है, लेकिन इंग्लिश में फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। दे आर कॉल्ड एंड चोजन एंड फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। विश्वासी नहीं, विश्वासी होता है बिलीवर। ठीक है, तो फेथफुल का मतलब होता है वफादार। तो ये तीन स्टेज है, ये तीन सीढ़ियां हैं। अगर आपको मसीह की कलीसिया बनना है तो ये तीन सीढ़ियों से निकलना है, तीन सीढ़ियों से होकर जाना है। तो इन दो के बारे में तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बुलाए हुए तो, बुलाए हुए तो, लेकिन चुने हुए शंटी। तो ये तीन जो स्टेजेस हैं या तीन जो स्थितियां हैं या सीढ़ियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ये बुलाए हुए कौन है, ये चुने हुए कौन है और ये वफादार कौन है। ठीक है, ये वफादार कौन है, तो ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक स्टेज के बाद शांति लगती है, फिल्टर होता है काम। जैसे पानी को फिल्टर करते हैं ना, ऐसे ही जैसे बोला ना, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है, यानी शांति हो गई। अभी बुलाए हुए तुम साइड पे हो जाओ, चुने हुए आ गया जो ऐसे। तो वो वचन पढ़ लो, मती 22:14। दो स्थितियां जिनके बारे में हम पढ़ते हैं,
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं।
देखो ये दो दो स्थितियां, दो सीढ़ियां। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन सारे चुने हुए नहीं है, चुने हुए कम है। अभी ये बुलाए हुए कौन है जो बहुत ज्यादा है? बुलाए हुए कौन है जो
बहुत ज्यादा है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:19।
यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस संसार की तुम संसार के नहीं, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है।
तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे संसार में से एक चुनाव की बात कर रहे हैं, संसार में से चुनाव की बात। जैसे कि क्रिश्चियन, ये संसार से क्या कर लिए गए? चुन लिए गए। लेकिन ये पहली स्थिति है, अभी इनको बुलावा मिल गया संसार में से, इनको क्या मिल गया? बुलावा, बाहर आ जाओ तुम।
जैसे कॉल दे दिया,
यस इंग्लिश शब्द कॉल्ड ही है, कॉल्ड। तो ये जो बुलाए हुए कौन है पता है? ये बुलाए हुए जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 22:14 में बोलते हैं, वो लोग जो सुसमाचार के संदेश पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना बचाने वाला मानते हैं, उसकी मृत्यु पे, क्रूस की मृत्यु पे विश्वास करते हैं कि उसने संसार के पापों के लिए अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास दिखाते हैं सिंपल भाषा में। ये जो आप जितने भी क्रिश्चियंस देखते हैं ना, अपने आप को बोलते हैं हम क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिश्चियंस जितने भी विश्वासी हैं ये सब है बुलाए हुए।
कॉल लेटर दिया है कमीशन, अभी इंटरव्यू होना है।
हाँ, चुनना बाकी है,
चुनना बाकी है। जैसे हम किसी जाते हैं नौकरी के लिए तो लेटर दिया जाता है,
देखो बुलावा जाता है ना। हाँ। आपको आ गया आर्मी में, चलो आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाख बंदा इकट्ठा होता है लेकिन सिलेक्ट कितने होते, 200-300। ठीक है, तो ऐसे ये क्रिश्चियंस जितने भी विश्वासी हैं, चाहे किसी में भी चर्च में भी जाए, वो बुलाए हुए हैं। वो सब क्या है, बुलाए हुए हैं। ये चर्च शब्द जो है ना, चर्च शब्द आया ग्रीक भाषा का शब्द एक लीशिया। ये दो शब्द है, एक लीशिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक अलग करने का बुलावा, ए कॉलिंग आउट, एक चुनाव। सिंपल भाषा में बोलो चुनाव या एक बुलावा। तो इसलिए ये जो सारे बुलाए हुए हैं, वो जो पहला कदम उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास दिखा के और विश्वासी बन जाते हैं। तो इनके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये बहुत है, बहुत है। तो यानी बहुत है क्रिश्चियन, लेकिन ये क्या करते हैं, अभी इनके बारे में मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, संडे सर्विस, संडे चर्च अटेंड करते हैं, खास प्रार्थनाएं, फास्टिंग मीटिंग, दशवास, और ये कोशिश करते हैं कि अब हम पाप का रास्ते पे ना चलें, अच्छे काम करें, ये सब, ये सारे इनको विश्वासी बोलते हैं। कई बार पूछते भी है वो, आप तो अब बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो या आप बिलीवर हो, तो मतलब विश्वासी, हम विश्वास करते हैं। तो ये है बुलाए हुए, ठीक है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, ठीक है। अविश्वासियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे कौन किन की बात हो रही, विश्वासियों की। ये संसार तो अलग है, इनसे तो अलग कर दिया, इनसे तो अलग करके दे दिया बुलावा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, संसार में से अलग हो जाओ,
एक डिपार्टमेंट के अधीन कर दिया।
हाँ, आपको नेवी में या आर्मी में नौकरी करने का बुलावा है, संसार में से बुला लिया, अभी आगे उसके बाद सिलेक्शन तो होनी है, बाकी है ना, तो वही है। तो इसलिए ये बुलाए हुए हैं वो जो ईसाई है, जो विश्वासी है, सारे ईसाई क्या है, बुलाए हुए। तो ये सब कौन सी स्थिति पे में है, पहली स्थिति पे, ये अभी पहली सीढ़ी पे है। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, छुने हुए बहुत कम है, छुने हुए कम है। तो जब हम देखते हैं इंडिया में जब प्रचार शुरू हुआ सुषमाचार का, पहली सदी में चेला थॉमस केरला और तमिलनाडु में आया, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं, क्या हुआ, कितने लोगों ने मसीह को अपनाया, क्या मिनिस्ट्री थी थॉमस की, कुछ नहीं पता है, कितने लोग क्रिश्चियंस बने कुछ नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन जब फुल फ्लेज प्रचार कब शुरू हुआ, जब गोरे इंडिया पे राज कर रहे थे 18वीं सदी में, विलियम कैरी करके एक ना बंदा था, 1761 से लेकर 1834 तक उसकी उम्र थी, जिसको आज बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मिशन, ये नई मिशनों का बाप विलियम कैरी, जो बड़े उत्साह से इंडिया में आया और बाइबल को 26 भाषा में अनुवाद किया, इंडिया की 26 भाषा में अनुवाद किया। जब वो आया इंडिया में, उसने प्रॉब्लम देखी इंडिया में, कि इंडिया में तो जो भाषा का अंतर बहुत है, एक स्टेट में दूसरी स्टेट का अंतर पड़ जाता है, सबको तो इंग्लिश नहीं आती है। तो उसने इस बात को समझा और बाइबल को ट्रांसलेट किया, तब से जो मसीहियों की गिनती तो बढ़नी क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, इसने एक भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन उसके बाद इसके फॉलोअर्स जो थे, इसके साथी, उन्होंने 26 में वो कर दिया। तो बात कर रहे हैं विश्वासियों की, बुलाए हुओं की। बुलाए हुए पहला कदम उठा लेते हैं मसीही जीवन में विश्वास का, लेकिन उनको मसीह में क्या बोला जाता है, बच्चे। उनको मसीह में क्या बोला जाता है, बच्चे, जो अभी दूध पीते हैं, आत्मिक दूध। ठीक है, पहला पत्रस 2:2,
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की ललचा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
तो ये बच्चे हैं, आत्मिक रूप से क्या है, बच्चे। इनको बाइबल दी गई, थोड़ा बहुत सीखे, 4 सुषुमाचार पढ़े और बाइबल का दूध पीना शुरू कर दिया। अभी ये दूध क्या है, पता है क्या है दूध?
शुरुआती शिक्षा।
पढ़ लो ये शुरुआती शिक्षा के बारे में, इब्रानियां 6:1-3 तक पढ़ लो।
इब्रानियां
6:1-3 तक। ये आरंभ की बातें हैं जिनके बारे में अभी वो बात करने जा रहा है। वो आरंभ की बातें क्या हैं, वो देख लो क्या क्या है। देखो बोलते हैं बचपना छोड़ना है, शुरुआती शिक्षा हो गई ना, अभी सिद्धता भी तो प्राप्त करनी है, आगे भी तो बढ़ना है, या उधर ही बैठे रहना है हमेशा? आगे पढ़ लो। मन फिराओ, तौबा करो, ये है शुरुआती शिक्षा। नंबर 1,
परमेश्वर पे विश्वास
करो। नंबर 2,
बपतिस्मा
लो। नंबर 3,
हाथ
रख के प्रार्थना करनी। नंबर 4, अंतिम न्याय होगा। नंबर 5, और पुनर्थान 6। तो ये सारी आरंभ की बातें हैं, ये आरंभ की शिक्षा, ये शुरुआती है दूध दूध। अभी ये छोड़ना है और सिद्धता की ओर बढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर क्या, लगभग 99% लोग पहली स्थिति पे शुरू होते हैं और पहली स्थिति पे ही, जैसे हम देखते हैं एक बंदा रेगुलर चर्च आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दूध ही पिए जा रहा है, दूध पीते 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 दूसरी स्टेज पे तो पहुंचा ही नहीं, चुनाव की स्टेज पे तो पहुंचा ही नहीं अभी तक, पहली स्थिति पे ही चलते चलते क्या हो गया। तो जितनी आज आप भीड़ देखते हो ना, तरस आता है, क्योंकि ये क्या है, सब बुलाए हुए। लेकिन इनको क्या आश्वासन दिया गया, एक जाता है, चर्च आओ, तुम तुम्हारा वीजा मैं लगवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पास्टर हूं, मैं लगवाऊंगा वीजा तुम्हारा स्वर्ग का। सॉरी,
वो खुद तो बचाने भी दूसरों को भी नहीं बचाने।
तो ये वो है जो जब सुसमाचार पढ़ते हैं, इनको पता है, जब शुरुआत, आपको भी बोला गया होगा क्या पढ़ो, मत्ती मरकुस योहन्ना पढ़ो आप, लूका, देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, शुरुआत यहाँ से होती है, होती है। उसके बाद धीरे धीरे पौलुस की पत्रियाँ आती हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है अपने पाप की स्थिति, फिर हमारी सोच में, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में बदलाव आना शुरू होता है ना। जब हम हमेशा कलीसिया जाते चर्च में, वहाँ पे हमें मैसेज मिलता है, नहीं हमें ये गंदे काम नहीं करने हैं। जैसे प्रभु चंती ने बोला कि किसी शादीशुदा औरत के अगर आपने गलत विचार से देख भी लिया तो समझ लो व्यभिचार कर दिया, सही ना। तो जब ये बातें सब पता चलती हैं, हमें पता चलता है अरे ये सब तो एक सच्चे मसीही बनना है तो नहीं होना चाहिए, तो हमें सफाई होनी क्या आ जाती है शुरू, हमारे कामों में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कईयों के वो भी नहीं होती है, मैक्सिमम अपने यहाँ तो होती नहीं है, लड़के बस जाते हैं चर्च में यही गलत काम करने जाते हैं। ठीक है, पढ़ लो एफिसियों 5:26 पढ़ लो। जी
कि उसके उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए।
तो ये विश्वासी जो बुलाए हुए हैं, जो अच्छा जीवन जीने की अभी कोशिश करनी जिन्होंने शुरू कर दी है, प्रभु यीशु मसीह पे इन्होंने भरोसा दिखा के इनको मिल गई है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब पता क्या है, इनके पापों की क्षमा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से इनको मिल गई है पापों की क्षमा। तो ये है परमेश्वर का पहला इनाम, गिफ्ट। रोमिया 5:1 पढ़ लो।
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं।
देखो धर्मी, विश्वास के द्वारा हम ठहराए जाते हैं धर्मी, समझ गए। तो हम खाली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिखाओ तुम क्या हो गए, धर्मी। तुम क्या हो गए, धर्मी। विश्वास दिखाने से ही परमेश्वर क्या कर देता है, हमारे पापों की क्षमा हमें। लेकिन जब हम ज्ञान में थोड़ा बढ़ते हैं, हमें समझ आती है परमेश्वर के वचन की, धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती हैं जैसे अब आपकी खुल रही हैं, तो आगे चल के हमें क्या महसूस होता है। याकूब 2:17 तो देखो अभी क्या है, खाली विश्वास कर रहे हो और काम में कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, तो फिर क्या है, वो विश्वास मुर्दा विश्वास है। इसका मतलब क्या है, ये जो विश्वास का पहला कदम आपने दिखाया है इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और बढ़ोतरी कैसे होगी, जब आपके कामों में प्रकट होना ये बात शुरू हो जाएगी। अभी आप पूछोगे ये कौन से काम करें हम, बोले वचन ही बोला ना कामों के बिना क्या है, अधूरा। अभी कौन से काम करें, चैरिटी के काम करें या सामाजिक काम करें, जो गरीब हैं उनकी मदद करें, उनको खाना दें, स्कूल खोलें, हॉस्पिटल खोलें, क्या ये काम परमेश्वर करने का बोल रहा है। ये अच्छे काम हैं बट ये वो काम नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। ये अच्छे काम है लेकिन इनका ये काम के बारे में बात नहीं हो रही है उस वचन में, क्योंकि बोला विश्वास काम के बिना अधूरा है। अभी कौन सा काम परमेश्वर चाहता है वो प्रभु यीशु मसीह बताएंगे। वो क्या बताएंगे प्रभु, कौन बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह। एक सच्चे ईसाई का क्या काम है जो परमेश्वर चाहता है एक ईसाई से, वो क्या काम है। यूहन्ना 6:28 में पढ़ो।
उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें।
तो ये देखो ये प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर क्या देते हैं प्रभु यीशु मसीह, पढ़ लो।
यीशु ने उनसे उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम,
परमेश्वर के काम नहीं बोला, परमेश्वर का काम बोला।
हाँ।
एक ही काम है क्या
ये है, पर पर तुम उस पर
उसके भेजने वाले पर विश्वास करो।
हाँ, उसने भेजा है विश्वास से,
तो
भेजने वाले विश्वास से।
ये आपको बड़ा अनोखा लग रहा, हम तो पहले विश्वास करते हैं ब्रदर, उसका मतलब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। यस, आप विश्वास करते हैं, लेकिन ये और गहरे विश्वास की बात हो रही है, ये अति पवित्र विश्वास की बात हो रही है, ये बहुत बड़े विश्वास की बात हो रही है। एक तो है शुरुआती विश्वास, सारे ईसाई शुरुआती विश्वास, लेकिन उनके विश्वास की गहराई नहीं है। अपने विश्वास की गहराई, परमेश्वर का काम पता क्या है कि हम उस पे भरोसा करें जिसको परमेश्वर ने भेजा, यानी प्रभु यीशु मसीह की। अभी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करने का मतलब क्या है कि हर तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के आज्ञाकारी बन जाएं, उनके हुक्मों के आज्ञाकारी बन जाएं। जो भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वो हम करें, जो कोई इंसान बोल रहा है वो नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वो हम करेंगे। ये है परमेश्वर का काम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो जो किया, जो बोला, वो क्या बोला? परमेश्वर का वचन, हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर का वचन। यानी परमेश्वर क्या चाहते हैं? तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी बात मानकर जैसा वो कहते हैं वैसा करें, उस तरीके से अपने आप को ढालें। और यूहन्ना 8:31 में पढ़ लो, अगर आप मेरे वचनों में बने हुए हो तो मेरे प्रेरित हो।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
चेले का मतलब समझते हो? क्रिश्चियन, ईसाई तब हो अगर मेरे वचन में हो तो, अगर मेरे वचन में हो तो हो तुम ईसाई, नहीं तो तुम ईसाई नहीं हो। ब्रदर, ये बात आज के एक्सपीरियंस पे आप पे लागू होती है। उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैं तो अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं सत्य नहीं बोल सकता, मैं मजबूर हूँ। सॉरी सर, आप क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है। ऐसे लोग जो प्रभु के वचन में नहीं है, जो उसके वचनों के अनुसार नहीं है, वो उसके प्रेरित नहीं हो सकते, वो उसके चेले नहीं हो सकते। और चेलों को नाम मिला है क्या? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन याद है पहली क्लास, क्रिश्चियन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? चेला बनने की। एक सच्चा ईसाई वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। और चेला क्या करता है? चेला कैसे बनते हैं? मैं बोलता है, आप बोलते हैं, आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। चेले का काम क्या होता है? गुरु का पीछा करना, गुरु का पीछा करना। तो वो विश्वासी जो ज्ञान में बढ़ के विश्वास की गहरी समझ प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं, वो पहुंचते हैं दूसरी स्टेज में। कौन सी? चुने हुए। और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बुलाए हुए को इसलिए बुलाया गया है कि वो पीछा करे। किसका? ये बात पढ़ लो साफ साफ, फिलिपियां 1:29, फिलिपियां 1:29।
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके दुख भी उठाओ,
उसके लिए
दुख भी उठाओ।
इसका और गहरे मतलब हम पढ़ लेते हैं, पहला पत्रस 2:21। अभी देखो बुलावा किस लिए है।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
समझ गए, बुलावा किस चीज के लिए है? उसके कदमों पे चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कष्ट सहे है ना, ये हमारे लिए छोड़ा एक आदर्श, और जो कोई इस आदर्श पे चलना चाहता है वो है प्रभु यीशु मसीह का चेला। जो कोई उसके कदमों का पीछा करने का मतलब समझते हैं ना, जो जो प्रभु ने किया वो हम करेंगे। तो प्रभु ने क्या किया? दुख झेला। और पहले वचन में हमने क्या पढ़ा? खाली इस पर विश्वास ही नहीं करना है, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाना। देखो साफ साफ है ना। तो बुलाए हुए और चुने हुए में अंतर है। बुलाए हुए क्या है? वो जो सिर्फ विश्वास करते हैं, नॉर्मल रूटीन बाकी अपना चलता है। लेकिन बुलाए जाने का कारण पता क्या है? कि तुम उसका पीछा करो। तो जो पीछा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का फैसला लेते हैं, वो करते हैं परमेश्वर का काम, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर का काम ये है कि जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करो। अभी उस पर विश्वास करने का मतलब यही है कि उसके कदमों पे चलना, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हमें करना। ये है वो काम जो विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन उदासी की बात ये है, दुख की बात ये है कि ये सब नहीं बताया जाता है।
तो पैसा कमाना चाहते हैं,
बोलते आप बस विश्वास दिखा के आते जाओ आते जाओ आते जाओ, और कहीं जिक्र नहीं किया जाता। कभी बोलते हैं ये लोग, क्या आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो? ऐसा बोलते हैं नहीं। क्या बोला जाता है? आओ आओ आओ, आशीष लेके जाओ, जाओ जाओ आशीष लेके जाओ, आशीष लेके जाओ, आशीष बस लेके जाओ, देना नहीं कुछ भी। लेकिन जो सच्चा ईसाई है वो क्या करता है? खाली विश्वास ही नहीं करता है, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाता है, और वो जो आदर्श उसने छोड़े हैं उनका पीछा करता है, उसके कदमों पे चलता है। वो होता है असली प्रेरित, वो होता है असली चेला, वो होता है असली ईसाई। वो तब पहुंचता है वो विश्वासी जो विश्वास की स्थिति से निकलकर पीछा करने का फैसला लेता है, वो बन जाता है चुना हुआ। तो क्या होता है? 90 या 95% ईसाई खाली पहली स्थिति पे अपना जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं, दूसरी स्टेज पे पहुंचते ही नहीं, विश्वासी होके ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे क्या बोलते हैं प्रभु? भुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। चुने हुए क्या हैं? कम। ये चुने हुए वो हैं, बहुत कम। अभी ये चुने हुए ईसाइयों में से हैं।
हाँ, दुख उठाएंगे वो, समझ लो गिफ्ट हो गए हैं।
हाँ, ये चुने हुए वो हैं जो कौन है? जो फैसला लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछा करने का, जो उसके कदमों पे चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं उसके हुक्मों का पालन करते हैं, जो उसके चेले बन जाते हैं। और तब पहुंचती है कौन सी स्थिति? मती 16:24 बोलते हैं, अगर कोई मेरे अभी देखो पीछे पीछे चलने का भी शर्त है। पीछे देखो, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें करना ही है, फैसला तुम्हें करना है। प्रभु यीशु मसीह लूका में पता क्या बोलते हैं? लूका में पता क्या बोलते हैं? पहले बैठ के सोच लो, क्योंकि जब कोई घर बनाने जाता है पहले वो कैलकुलेट करता है, उसके पास सब कुछ है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी अगर अगर तुम्हें लगता है तो तुम करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पढ़ लो ये बात, मत्ती 16 और उसका 24।
अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर दे।
तो चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम आना चाहते हो। अगर आना चाहते हो तो उसके लिए शर्त है। अगर मेरा पीछा करना चाहते हो तो उसके लिए शर्त क्या है? अपने आप का इनकार। अपने आप के इनकार का मतलब क्या है? अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला? अपने आप का इनकार। ये था वो पहला कदम जो प्रभु यीशु मसीह ने भी उठाया और हमें भी उठाना है। अपने आप के इनकार का मतलब क्या है? इब्रानियां 10 उसका 7। आप क्या बोल रहे थे सिस्टर? नहीं नहीं नहीं, अपने आप के इनकार का मतलब आज आपको समझ आ जाएगा क्या है। पढ़ लो
10 का 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो।
ये है अपने आप का इनकार। मतलब क्या? अपने आप का इनकार का मतलब क्या है?
परमेश्वर की इच्छा पूरी करना।
कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अपनी इच्छा को क्या कर दिया? और किसकी इच्छा ले ली? परमेश्वर की इच्छा ले ली। तो यही चीज वो किनको करने के लिए बोल रहा है? जो मेरा पीछा करना चाहते हैं, जो चुने हुए बनना चाहते हैं, वो क्या करें? अपनी इच्छा रद्द और परमेश्वर की इच्छा ले लो। और रोमिया 12 का 2 पढ़ लो ये बात। रोमिया 12:2।
इस संसार से सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम।
तुम्हारा मन जो है नया हो जाने की वजह से, देख लो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है, एक तो आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? संसार की आत्मा, संसार की संसारिक लालसाएं या संसारिक लालच या जो भी है, अभी इसको त्यागना है। इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छा। अपनी इच्छा का मतलब आपके कुछ सपने हैं, आप कुछ बनना चाहते हो संसारिक तौर पे, अच्छी नौकरी या कुछ भी, आपके कुछ गोल हैं, एम्बिशंस हैं, शरीर धरती के, ये सब खत्म कर दो। मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, शायद परमेश्वर नहीं चाहता है, तो ये खत्म करना है। मैं बहुत बड़ी नौकरी हासिल करना चाहता हूँ, शायद ये परमेश्वर नहीं चाहता, तो इसको खत्म करना है। क्योंकि हम एक ही आत्मा रख सकते हैं, या तो परमेश्वर का या तो संसार का। और अगर हमारा बर्तन जो है अगर संसार की आत्मा से भरा हुआ है, तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ से जाएगा? कैसे पहुंचेगा अंदर? सही ना? तो इसलिए अपनी इच्छा का इनकार का मतलब क्या? अपने सपने, अपनी मंजिल, अपने गोल, अपना एम्बिशन, अपने तौर तरीके, रीति रिवाज, सब 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 छोड़ना पड़ेगा। और आगे आना है किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हमारा हर एक कदम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उठना चाहिए, उसके वचन की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। अब जब हम ऐसा कर देते हैं ना, जब हम परमेश्वर की इच्छा ले लेते हैं, अपनी इच्छा त्याग देते हैं, तो एक तरह का हम अपने आप को गिरवी रख देते हैं परमेश्वर के सामने। गिरवी समझते हैं ना? अब मैं मेरा नहीं रहा, मैं तेरा हूँ। मेरे समय पे तेरा अधिकार है, मेरे धन पे तेरा अधिकार है, मेरे मन पे तेरा अधिकार है, मेरे शरीर पे तेरा अधिकार है, मेरे गुणों पे तेरा अधिकार है। अभी अगर मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, तो परमेश्वर मुझे ये थोड़ा चाहिए, ये धरती का काम करने के लिए दे दीजिए। ऐसे ये है अपनी इच्छा का इनकार। उसके बाद इसे बोलते हैं, इसको पता है, अपनी इच्छा का इनकार, इसे एक शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सेक्रेशन जिसका मतलब होता है वाचा बांधना। तो हम परमेश्वर के साथ वाचा बांध लेते, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधी, क्या बोला, लो मैं आ गया परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, जैसे किताबों में लिखा हुआ है। तो यही किसको करना है, कॉन्सेक्रेशन शब्द है इंग्लिश में, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्सेक्रेटेड, कॉन्सेक्रेटेड सेंट्स, यानी वाचा बांधे हुए संत, वाचा बांधे हुए। तो ये बांध लेते हैं क्या, परमेश्वर से वाचा। जब ये वाचा बांध लेते हैं तो ये बन जाते हैं चुने हुए। अब ये चुने हुए हो गए, चुने हुए कौन है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलने का फैसला कर लिया। हाँ, अब तो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलने का पहला कदम क्या है, अपनी इच्छा का इनकार। यानी जो जो मैं पहले शारीरिक तौर से सोचता था या इच्छा रखता था वो अब नहीं चलेगी, अब परमेश्वर की, तब ये है अपने आप का इनकार। देखो कितना गहरा है। उसके बाद अगला क्या है, अपनी सलीब उठाओ, अपनी सलीब, सलीब उठाने का मतलब है बलिदान, बलिदान। सलीब जो तस्वीर है, जो सलीब चिन्ह है, उसका मतलब है बलिदान, बलिदान वाला जीवन जीना है। अभी अभी हमने ये नहीं है कि जैसे ये सलीब है ये उठा के रखनी है या गले में सलीब डालनी है, सलीब यहाँ पे है एक चिन्ह और उसका मतलब है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब क्या है, कई रोमन कैथोलिक वाले क्रिश्चियन पता क्या करते हैं, साउथ में जब ये आता है ना, फिलिपींस में भी ऐसा होता है, जब ये गुड फ्राइडे आता है अपने आप को सलीबों पे लटका लेते हैं ऐसे नेल लगाते हैं। तो ये सलीब नहीं उठाने के लिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने, सलीब का मतलब है बलिदान। और बलिदान कौन सा, जीवित, मुर्दा बलिदान नहीं, जीवित। ये पढ़ लो रोमिया 12:1।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर को दुलार कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
बलिदान,
परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान।
देखो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, ये है तुम्हारी आत्मिक सेवा। अपने आप को जीवित बलिदान, परमेश्वर की नजर में परवान जो हो वो चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है जीवित बलिदान, जीवित बलिदान है आपका जो मनुष्य जीवन है उस पे पहले आपका अधिकार था, अभी जब आपने वाचा बांध ली है तो अधिकार किसका हो गया, परमेश्वर का। अभी इसमें आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, बोला था एक के पास पांच थे,
पांच जोड़े थे,
उसने
तीन थे
तो पांच वाले ने पांच जोड़े, तीन वाले ने तीन जोड़े,
एक वाले ने
दबा दिया, तो बोला वो लेके किसको दे दिया, पांच वाले को दे दिया। तो इसका ये क्या था दृष्टांत, ये था गुणों के बारे में। गुण, पांच गुण हो सकते हैं किसी के पास, किसी के पास एक हो सकता है, किसी के पास दो हो सकता है, जितने भी हैं उनको प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करना है। तो ये गुण क्या है, ये है पांच, मैं बताता हूं कौन सा। सबसे पहले समय, समय बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, पैसा धन है ऐसा बोलते हैं, सॉरी समय धन है, क्योंकि जितना समय आप काम पे लगाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। टाइम इज इक्वल टू मनी। ये जब ये जो बिजनेस वगैरह सिखाते हैं ना, एमवे वाले या कोई भी ऐसे कोई बिजनेस, तो ये सबसे पहले सिखाएंगे टाइम, जितना समय आप दोगे उतना पैसा आपको आएगा। तो सबसे पहला गुण है समय, कि आप ज्यादा समय परमेश्वर की सेवा में लगाते हो, ये है एक जीवित बलिदान। दूसरा बलिदान क्या है, आपकी सेहत, के आप में शक्ति है, ताकत है, एक जगह से दूसरी जगह जाके आप परमेश्वर के सत्य के वचन को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ये है आपकी। अगर अच्छी सेहत है तभी कर सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको परमेश्वर ने अच्छी सेहत दी है तो उस सेहत को आप इस्तेमाल करते हो परमेश्वर की वचन की सेवा के लिए, सत्य की सेवा के लिए, तो ये भी एक बलिदान है, जीवित बलिदान। उसके बाद तीसरा जो है वो धन। अगर आपके पास पैसा हो तो वो पैसा या घर या आपके पास कोई व्हीकल हो, जैसे आपके पास गाड़ी है, इसको परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बलिदान में गिनी जाएगी। ये पैसे में आ जाता है कि आपका जो कीमती चीज थी उसको आपने परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर आपने कोई मानसिक गुण है, मानसिक गुण जैसे आप पढ़ा सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, कहीं को काउंसलिंग करने का बहुत अच्छा गुण होता है, ठीक है, समझाने का, ब्रदर तुम ऐसा देखो ये ऐसा है, कन्विंस करने का, तो ये मेंटल टैलेंट्स में आ जाता है। तो ये चौथा गुण। पांचवा गुण है, अगर आप में ज़्यादा लोगों में बोलने का गुण है, उनको आप प्रभावित करते हो, तो ये पांचों के पांचों, किसी के पास पांच है, किसी के पास तीन है, किसी के पास दो है, किसी के पास एक है, जैसा भी है उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु हिसाब मांगता है। ये पढ़ लो लूका 12:48। बारह अड़तालीस
परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मिल जाएगा।
देखो हिसाब मांगा जाएगा। अगर आपके पास पांच गुण है तो पांच का हिसाब लिया जाएगा, आपके पास तीन है तो तीन का लिया जाएगा, दो है तो दो, एक का तो एक, जितना जिसको मिला है उतना उससे हिसाब मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये है बलिदान जो हम चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को, और ये परमेश्वर को परवान होना चाहिए, पवित्र पहली बात, तो दूसरी बात परमेश्वर को स्वीकार। परमेश्वर को स्वीकार पता कैसे होगा, जब हम सच्चे मन से वाचा बांधते हैं, सच्चे मन से वाचा कि हाँ सचमुच परमेश्वर आज से मैं तेरी इच्छा को पूरी, तब उसके बाद परमेश्वर आपका बलिदान स्वीकार करेगा, नहीं तो आप जो मर्जी करते जाओ नहीं स्वीकार करेगा बलिदान, क्योंकि ना तो वो पवित्र है और ना ही वो वाचा बांधा हुआ बलिदान है। तो ये जो मसीही जीवन, जिनका कुर्बानी वाला मसीही जीवन शुरू होता है, वो होता है एक वायदे के साथ, वाचा के साथ। वो पढ़ते हैं हम भजन संहिता 25:14, भजन संहिता 25:14।
यहोवा के भेद को नहीं जानते हैं जो इससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा,
अपनी वाचा
उन
पर प्रकट करेगा। देखो उनके लिए है, परमेश्वर के भेद उन पे प्रकट होते हैं जो डरते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना एक रहस्य पूर्वक वाचा, सीक्रेट कवेनेंट उन पे प्रकट करेगा। ये सीक्रेट कवेनेंट क्या है? एक समझौता। आप शादी देखते हैं ना, शादी भी एक समझौता है, एग्रीमेंट है ना, शादी मैरिज कवेनेंट ऐसे बोलते हैं, विवाह का वाचा, विवाह की वाचा है ना। विवाह की वाचा क्या होती है? लड़की लड़के से वाचा बांधती है और लड़का लड़की से वाचा बांधता है। कभी मैरिज होती देखी ना क्रिश्चियन में, क्या बोलते हैं, लड़की को वचन पढ़ाया जाता है कि मैं हमेशा अपने पति के अधीन रहूंगी, मैं वफादार रहूंगी, मैं, जबकि ऐसा होता नहीं, कभी जो औरत है कभी मर्द के अधीन होती नहीं है मैक्सिमम केसेस में, बल्कि मर्द उसके अधीन हो जाता है औरत की, है ना। लेकिन वाचा तो यही बंधवाई जाती है ना, लड़का लड़के से वाचा क्या बंधवाई जाती है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसको अपना शरीर का अंग मान कर रखूंगा, ये सब सब शादी के वक्त वाचा बांधी जाती है, बांधी जाती है ना। उसके बाद जयमाला होती है, फिर रिंग डलती है, लड़का लड़की को पहनाता है, लड़की लड़की को। तो कितनी सुंदर सेरेमनी होती है ना शादी की वाचा में। ऐसे ही परमेश्वर के साथ जब वाचा बांधी जाती है उसका भी एक चिन्ह है। शादी तो एक क्या है, चिन्ह कि किस चीज का, कि लोगों को इकट्ठा किया है वाचा बांधने के लिए, लड़के ने लड़की के लिए, लड़के ने लड़की ने लड़के के लिए। तो इसी तरीके से जो बपतिस्मा है, बपतिस्मा ये बात बपतिस्मे के वक्त होती है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा किसको दिया जाना चाहिए? जब बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या होते हैं, बपतिस्मे का मतलब होता है कि आज से जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरी इच्छा खत्म और आज से मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, ठीक है। तो जो बपतिस्मा की वाचा परमेश्वर के साथ बांधता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बांधी, वो दाखिल हो जाता है कहाँ, यर्दन की नदी में। और यर्दन की नदी, आपको मैंने बताया था किस चीज का चिन्ह है, यर्दन की नदी का मतलब है संसार। इसीलिए आपको कहाँ लेके जाया जाता है, पानी में। बपतिस्मा कहाँ होता है, पानी में। पानी चिन्ह किसका है, अपनी रोटी पानी पे फेंक दे बहुत दिनों के बाद तैरता पाएगा। पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब क्या है, वो जीवन का जल है। पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब है संसार। प्रकाशित वाक्य 17:15, पानी का मतलब है संसार। और आप किस में खड़े हो, आधे पानी के अंदर आधे पानी के बाहर। इसका मतलब क्या है, आधे आप संसार में हो और आधे संसार के बाहर, मतलब आप संसार में रहते हुए संसार के नहीं हो अभी। और फिर आपको क्या किया जाता है, पीछे को फेंक दिया जाता है। पीछे को फेंकने का मतलब क्या है, आगे को तो नहीं फेंकते, किधर को लेके जाते हैं, इसका मतलब है किधर, पानी के अंदर। इसका मतलब है मैं संसार के लिए मर गया, मैं संसार के लिए मर गया। और उसके बाद आपको खड़ा किया जाता है, उसका मतलब है अब आप मसीह में जी उठे हो, अब आप मसीह में जी उठे हो, ठीक है। इसका और गहराई में मतलब मैं 53वीं क्लास में, जिसमें बपतिस्मे की क्लास है, मैं लूंगा उसमें बताऊंगा। तो ये है मोटा मोटा बपतिस्मे का मतलब। लेकिन क्या ये मतलब आज जितने लोग बोलते हैं उनको पता है, उनको क्या बोला जाता है, पापों से बचना है तो बपतिस्मा लो। अरे पापों से बचने के लिए बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, क्यों, खाली विश्वास करो पाप माफ। बपतिस्मा है वाचा बांधने वालों के लिए, जो कदमों पे चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, जो रोज बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर, जीवित बलिदान, जिनका अभी अपने आप पे अधिकार नहीं रहा, किसका अधिकार हो गया है, परमेश्वर। इसे इसे एक तरह का बोल सकते हैं, हम जब पानी में खड़े होते ऐसे बपतिस्मा लेने के लिए ऐसे। इसका मतलब क्या है, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ अपना अपने आप को। दो बंदे होते हैं ना जिनके हाथ में आप अपने आप को क्या कर देते हैं, अभी आप मुझे नहीं पता यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं या नहीं, लेकिन साउथ में हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ने का मतलब पता है, सरेंडर कर रहा हूँ मैं अपने आप को, सरेंडर कर रहा हूँ। किसके हाथों में, जो बपतिस्मा देता है वो कौन, किसकी तस्वीर होता है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उठा के तेरे को मारते हैं, बोलते तू संसार के लिए क्या हो गया, अब मर गया। और बाद में प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कर देते हैं, जीवित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात पढ़ लो कुलूसिया 3:3 में, हम्म,
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
तुम मर गए, तुम संसार के लिए क्या हो गए, मर गए। अभी संसारिक आत्मा नहीं चाहिए तुम्हें, खत्म हो गई भाई साहब, मर गए आप तो मर गए। इसलिए अब हम जब बात करते हैं ना, तो हम ब्रदर लोग जब आपस में बात करते तो हम बोले क्या ब्रदर मर रहे हो ना, मरना जारी है या नहीं। अगर मरना जारी नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो मरते रहो, मरते रहो, अच्छी बात है, मरते रहो। हम ऐसा ऐसे बातें करते हैं कई बार आपस में, मरना बहुत जरूरी है संसार के लिए। और यूहन्ना 6:44 में देख लो, यूहन्ना 6:44 आपको जीवित कर लेगा अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, 6:44
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर दिला उठाऊंगा।
ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, मैं तुम्हें आत्मिक स्वर्गीय जीवन दूंगा, स्वर्ग का जीवन, परमेश्वर को रूबरू देखोगे आप आमने सामने। ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का, ये है वाचा बांधने का इनाम, ये है प्रभु यीशु मसीह के कदमों का पीछा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चलते चलते कहां पहुंच गए, पिता परमेश्वर के पास। हम भी उसके कदमों के पीछे पीछे चलते चलते वफादारी से चलते रहे तो उधर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोग जो वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ, उनको शब्द मिलता है संत। और परमेश्वर क्या बोलता है, बोलता है मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने मेरे साथ बलिदान वाली वाचा बांधी है। ये पढ़ लो भजन संगीता 50:5, ऐसे बुलाता है परमेश्वर फिर चुने हुओं को।
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है।
इंग्लिश में भक्त है या देख लो क्या है, संत है। गैदर माय सेंट्स,
गैदर टू बी माय फेथफुल सॉन्स वन टू मेड ए कॉन्वेंट
टू मेड अ कॉन्वेंट ऑफ सेक्रेटरी। तो मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने मेरे साथ कुर्बानी वाली वाचा बांधी है, कुर्बानी वाली वाचा बांधी है। तो ये ईसाइयों का ग्रुप जिसके बारे में ये बन जाते हैं हमारे भाई, जितने ने सच्ची वाचा बांधी है क्रिश्चियन, अभी नॉर्मल क्रिश्चियन, ये नाम के क्रिश्चियन और चुने हुए में अंतर है। लेकिन जितने भी जो वाचा बांधते हैं, जो चुन हो गए हैं, वो बन जाते हैं हमारे भाई। तो इनको ही पौलुस पत्रस सब भाई बोलते हैं, भाइयों। भाइयों को मतलब है जितने वाचा बांधे हुए भाई हैं। तो इस ग्रुप के बारे में क्या बोल पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17, ये पढ़ लो भाई, नई सृष्टि।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
नई सृष्टि। जो कोई मसीह में है, जिसने कुर्बानी वाली वाचा बांधी है, वो है नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब अब वो उनका जन्म आत्मा के द्वारा हो गया है, अब उनको एक नया मन मिल गया है और नए मन की सारी बातें नई हो गई हैं। अभी सपने भी बदल गए हैं, अभी एम्बिशंस भी बदल गए हैं, अभी मंजिल भी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। पहले शारीरिक था, संसारिक था, अब आत्मिक है, स्वर्गीय है। तो इस ऐसे लोगों के लिए क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, यहाँ ना तो जंग लगने का खतरा है, ना चोरी का खतरा है। तो ये सब किन के बदल जाता है। पहले हम शारीरिक तौर से सोचते थे हमारा एक बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, लेकिन चलते चलते हमें समझ आती है तो नाशवान है। ये तो कब टूट जाए, घर कब गिर जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट कब हो जाए, कुछ नहीं पता। मांगना है तो क्या, स्वर्गीय जिसमें ना तो जंग लगता है, ना खतरा है कोई, ना टेंशन है। तो इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों का पीछा करने का फैसला करते हैं, उनके उनको मिल जाता है एक नया मन, एक पुराना, अभी लड़ाई शुरू हो जाती है, एक नया मन है, एक पुराना मन है, एक तो आत्मिक है, एक तो संसारिक है, ये धरती का है। तो पढ़ लो, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नया मन बोलता है, नई सृष्टि वाला, नहीं तू अब अच्छे काम कर। पुराना मन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पुराना मन, क्योंकि पुराना मन बहुत बड़ा है, नया मन इतना सा है, हमेशा दबा लेगा, हमेशा दबाएगा। तो नए मन को बढ़ना है तो खुराक मिलनी चाहिए, भोजन मिलना है, और वो भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। फिर क्या होगा, ये पुराना मन छोटा होता जाएगा, नया मन बड़ा होता जाएगा। जब ये नया मन बड़ा होगा तब ये पकड़ेगा छोटे मन, पुराने मन को, चल बैठ। लेकिन शुरू में क्या होगा, पुराना मन नमे नए मन को बोलता है, चल साइड पे लग जा, अभी तू तेरा काम नहीं है यहाँ पे। ये बात पढ़ लो, कुलूसियां 3:9-10। नौ से लेकर 10 तक।
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को अपने कामों समेत उतार डाला है।
देखो, पुराना मनुष्य और उसके काम तो तुमने निकाल दिए हैं, आगे
और नए मनुष्य को पहन लिया है।
हाँ?
तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनना चाहता है।
देखो देखो ये बात, नया मनुष्य तब पहनना है, ठीक है, और नए मनुष्य तब के गुण क्या है, दूसरा कुरंथियां 2:17 में पढ़ लो, दूसरा कुरंथियां 2:17।
प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
और आगे,
परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में हंस हंस करके बदलते जाते हैं।
नहीं, 16 पढ़ लीजिए, 16।
परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा।
आगे,
प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
इंग्लिश में पढ़िए मेरा सिस्टर, क्या है 2:17, 2 करंथियां 2:17।
तो वी आर नॉट लाइक टू मैनी।
हाँ,
पैडलर्स।
We do not peddle the word of God for profit.
Of God, but
for
but
profit.
As man of sincerity, as commissioner.
हाँ, ये वचन अब पढ़ना हिंदी में क्या है?
क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते
हैं। अपने लाभ के लिए। पढ़ लो, आगे पढ़ लो।
परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से
इसका मतलब समझते हो क्या? जैसे आज है ना, आज क्रिश्चियन स्कूल है या हॉस्पिटल है या कॉलेज है, इनका फोकस क्या है, इनका इनका मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना। और इवन आज जो पास्टर्स और जो अपने आप को परमेश्वर के दास बोलते हैं, ये जो प्रचार करने निकलते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम के प्रति, मतलब प्रेम से नहीं, ये निकलते हैं अपने नाम के लिए, पैसे के लिए, गौरव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये पौलुस बोल रहा है, हम वैसे नहीं है जो परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है ना, वो तो बिजनेस करता है, वो तो परमेश्वर का काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आजकल सब कुछ चल रहा है, सच्ची कलीसिया में ये सब नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये चुने हुए वो हैं जिनके मन बदल गए हैं, ये चुने हुए वो हैं जो नई सृष्टि हैं, ये चुने हुए वो हैं जो बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान वाली वाचा बांधी है और बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये भी नहीं है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि इसके बाद भी फिल्टर लगना है और उसके बाद होंगे वफादार। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम है, ये दो स्थितियां हमने पढ़ ली हैं। बुलाए हुए कौन है? क्रिश्चियन। लेकिन जो वो क्रिश्चियन जिनको सत्य मिलता है और सत्य मिलने के बाद वो समझते हैं कि हमें प्रभु का पीछा करना है, वो पहुंचते हैं दूसरी सीढ़ी पे। मैक्सिमम क्रिश्चियन पहली सीढ़ी पे ही मर जाते हैं, दूसरी सीढ़ी पे पहुंचने वाले बहुत कम हैं। लेकिन दूसरी सीढ़ी से भी आगे निकलते हैं दो ग्रुप, एक तो वो जो वफादारी से वाचा निभाते हैं, एक तो वो जो वफादारी से वाचा नहीं निभाते। तो जो वफादारी से वाचा निभाते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तो इसके बारे में तो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक परमेश्वर ही हम सबको आशीष दे। आमीन।